तीसरा शक्तिशाली कंबुज साम्राज्य, कंबुज राज्य का विस्तार। अंकोर क्षेत्र में यशोधरपुर और कोहकेर को केंद्र बनाकर कंबुज के विविध राजाओं ने अपने राज्य की शक्ति का जिस ढंग से उत्कर्ष किया, इसका वृतांत पिछले प्रकरण में लिखा गया है। इन राजाओं के प्रयत्न से कंबुज एक शक्तिशाली एवं विशाल राज्य बन गया था, जिसकी उत्तरी सीमा चीन के साथ लगती थी। पूर्व में चंपा की स्थिति एक स्वतंत्र राज्य की थी, पर कंबुज के राजा उसे अपनी अधीनता में ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते थे और इस प्रयत्न में अनेक बार उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी। चंपा के उत्तर में तोनकिन का प्रदेश कंबुज राज्य के अंतर्गत था और उसके उत्तर में स्थित यूनान प्रांत में जो भारतीय उपनिवेश आलवीराष्ट्र और मिथिला राष्ट्र थे, वे भी कंबुज के आधिपत्य को स्वीकार करने लगे थे। ये प्रदेश वर्तमान समय में चीन के अंतर्गत है और इनके अधीन हो जाने के कारण कंबुज राज्य की उत्तरी सीमा ठेठ चीन के साथ जा लगी थी। यूनान के ये राज्य कंबुज की अधीनता में आ गए थे, इस बात की पुष्टि स्थानीय विवरणों तथा अनुश्रुतियों द्वारा भी होती है। मेकांग नदी की एक उत्तरी शाखा नदी के तट पर स्थित बयायो नगरी के पुराने इतिवृत्त के अनुसार, जब इस नगरी की स्थापना हुई तो समीप के जंगलों और पहाड़ियों पर खमेर कंबुज राजाओं द्वारा निर्मित राजप्रसादों तथा नगरों के खंडहर सर्वत्र बिखरे पड़े थे। इसी प्रकार एक अन्य स्थानीय विवरण के अनुसार, एक खमेर राजा ने सुवर्णग्राम नामक एक नगरी की स्थापना उस स्थान पर की थी, जहां की बाद में किस एन सेन नगर आबाद हुआ। ये सब तथ्य यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं कि राजेंद्र वर्मा जैसे प्रतापी राजाओं के शासनकाल में कंबुज राज्य की उत्तरी सीमा ठेठ चीन के साथ जा लगी थी। पश्चिमी दिशा में कंबुज राज्य की सीमा सियाम तक पहुंच गई थी और मिनम तथा मेकांग नदियों के मध्यवर्ती प्रदेशों पर कंबुज का आधिपत्य स्थापित हो गया था। लवपुरी का प्रदेश कंबुज राज्य के अंतर्गत था और उसके उत्तर में जो अनेक छोटे छोटे राज्य पृथक रूप से विद्यमान थे, वे कंबुज देश के राजाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। लवपुरी प्रदेश की स्थिति सियाम की खाड़ी के उत्तर और कामफेंग फेत के दक्षिण में थी। लवपुरी प्रदेश के उत्तर में स्थित जो राज्य कंबुज के प्रभुत्व में थे, उनमें सुखोदय योनक राष्ट्र और क्षेम राष्ट्र प्रधान थे। क्षेम राष्ट्र की पूर्वी सीमा आलवीराष्ट्र के साथ लगती थी, वह भी कंबुज के अधीन था। मलाया प्रायद्वीप के उत्तरी भाग पर भी कंबुज का आधिपत्य स्थापित हो गया था और इस प्रकार उसके राज्य की पश्चिमी दक्षिणी सीमा का ये स्थल डमरू मध्य तक आ लगी थी। सियाम और उत्तरी मलाया को अपनी अधीनता में ले आने के कारण कंबुज राज्य भारत से अधिक दूर नहीं रह गया था। इन देशों के बीच में अब केवल बर्मा था, जिसमें उस समय रामावती, हंसावती, द्वारवती, श्री क्षेत्र और रामंग देश सदृश कतिपय स्वतंत्र राज्यों की सत्ता थी। सूर्यवर्मा प्रथम 11वीं सदी के प्रारंभ भाग में कंबुज राज्य भौगोलिक दृष्टि से इतना अधिक विस्तृत हो चुका था, जबकि अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर राजा सूर्यवर्मा प्रथम कंबुज देश के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। 1010 ईस्वी को सूर्यवर्मा तथा इसके उत्तराधिकारी राजाओं के शासनकाल में कंबुज की और भी अधिक उन्नति हुई। अपने राज का विस्तार करने का तो उन्होंने प्रयत्न किया ही, पर संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में जो उन्नति इन राजाओं के समय में कंबुज देश ने की, वह वस्तुतः अत्यंत महत्व की थी। सूर्यवर्मा प्रथम ने 9 वर्ष के गृह युद्ध के पश्चात राजगद्दी प्राप्त की थी। अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर देने मात्र से वह निश्चिंत नहीं हो सकता था। उसके लिए यह अत्यंत आवश्यक था कि राज्य के सब पदाधिकारी तथा प्रमुख व्यक्ति उसके प्रति अनुरक्त बने रहें। इस प्रयोजन से उसने सब पदाधिकारियों तथा प्रमुख व्यक्तियों से अपने प्रति राजभक्ति की शपथ लिवाने की एक नई परंपरा का आरंभ किया। यह शपथ अंकोर थोम के गोपुरम के 8 स्तंभों पर उत्कीर्ण है और इसे 1011 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया था। शपथ इस प्रकार है, 933 शकाबद भाद्रपद नवमी रविवार, यह शपथ है जिसे कि हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तमव्राच दरबारी ले रहे हैं और अपना हाथ काटकर कृतज्ञता और विशुद्ध भक्ति के साथ 924 शकाबद से पवित्र अग्नि, पवित्र रत्न, ब्राह्मणों और आचार्यों के सामने संपूर्ण प्रभुता को भोगने वाले परम भट्टारक श्री सूर्यदेव को अर्पित कर रहे हैं। हम कभी कभी शत्रु से साठ घाट नहीं करेंगे। हम इस बात का वचन देते हैं कि परम भट्टारक के प्रति कृतज्ञता पूर्ण भक्ति के साथ हम सभी कार्यों का अनुष्ठान करेंगे। युद्ध होने पर अपने प्राणों की कोई चिंता न कर हम उनके लिए ईमानदार से लड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम युद्ध क्षेत्र से भागेंगे नहीं। संपूर्ण जीवन भर के लिए हम अपने को परम भट्टारक की सेवा में अर्पित करते हैं। अतः अपने मृत्यु तक प्रत्येक काल और परिस्थिति में हम राजा के प्रति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। यदि परम भट्टारक किसी काम के लिए किसी संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें विदेश जाने की आज्ञा देंगे तो हम विदेश जाकर उसके विषय में सब विवरण खोज लाएंगे। यहाँ उपस्थित हम सभी यदि दीर्घजीवी परम भट्टारक के प्रति राजभक्ति की शपथ पर डटे न रहे तो हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे हमें सब प्रकार का दंड दें। यदि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने से बचने के लिए अपने को छिपाएं तो हमारा जन्म यावच्छद्र दिवाकरो 32 नरकों में हो। यदि हम अपनी शपथ को ईमानदारी से पूरा करें तो परम भट्टारक हमारे देश को पुनीत प्रथा के अनुसार हमारे परिवारों की रक्षा के लिए आदेश दें, क्योंकि हम अपने स्वामी परम भट्टारक श्री सूर्य वर्म देव के अनुरक्त अनुयायी हैं, जो परम भट्टारक 924 शकाबद से पुनीत शासन को पूर्णतया हाथ में लिए हुए हैं। भक्त सेवक के लिए इस लोक तथा परलोक में हमें समुचित बदला प्राप्त हो। 1011 ईस्वी में जिस शपथ का राजा सूर्य वर्मा द्वारा प्रारंभ किया गया था वह वर्तमान समय में भी कंबोडिया कंबुज के राज पदाधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती है, यद्यपि उसके कतिपय शब्द अब परिवर्तित हो गए हैं। सूर्य वर्मा प्रथम बौद्ध धर्म का अनुयायी था। लोपपुरी या लोपपुरी सियाम में से 1022 ईस्वी का एक अभिलेख उपलब्ध हुआ है जिसमें मठों, विहारों तथा आश्रमों के विषय में राजा सूर्य वर्मा की आज्ञा उल्लिखित है। इस राजाज्ञा द्वारा समस्त धार्मिक स्थानों, विहारों, यतियों और भिक्षुओं को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने तप द्वारा प्राप्त पुण्य के राजा के को अर्पित कर दें। स्वयं बौद्ध होते हुए भी सूर्य वर्मा ने पौराणिक हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान किया, क्योंकि कंबुज देश के निवासी इसी धर्म के अनुयायी थे। अनेक शैव और वैष्णव मंदिर भी उस द्वारा बनवाए गए थे। उसके गुरु योगीश्वर पंडित थे, जिनका अपनी माता की ओर से राजा जय वर्मा द्वितीय के साथ संबंध था। सूर्य वर्मा ने काव्य, व्याकरण, दर्शन तथा भाषा आदि संस्कृत ग्रंथों व शास्त्रों का भली भांति अनुशीलन किया था। एक अभिलेख में इस राजा के पांडित्य का उल्लेख है और उसे विविध शास्त्रों का ज्ञाता कहा गया है। अनेक प्रदेशों की विजय कर सूर्यवर्मा प्रथम ने कंबुज की शक्ति का विस्तार भी किया था। 15वीं व 16वीं सदी के जिन काल मालिनी तथा मूल शासन नामक ग्रंथों में इस राजा द्वारा सियाम तथा दक्षिणी वर्मा की विजय का उल्लेख है। दक्षिणी सियाम पहले ही कंबुज राज के अंतर्गत था और उत्तरी सियाम के अनेक राज्य भी उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, पर सूर्य वर्मा द्वारा उत्तरी सियाम पर कंबुज के प्रभुत्व को अधिक सुदृढ़ किया गया और उसका शासन करने के लिए कंबुज देश के राज कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। दक्षिणी वर्मा के कुछ प्रदेश भी इस राजा द्वारा आक्रांत किए गए थे। यद्यपि इन विजय यात्राओं का वृतांत ज्ञात नहीं है। 1043 ईस्वी में सूर्य वर्मा प्रथम की मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात उसे निर्वाण पद का विरुद्ध दिया गया, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उदयादित्य वर्मा द्वितीय। सूर्य वर्मा प्रथम की मृत्यु के पश्चात 1049 ईस्वी में उदयादित्य वर्मा कंबुज देश के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। हर्ष वर्मा तृतीय के लोवेक अभिलेख के अनुसार सूर्य वर्मा के परलोक सिधार जाने पर उसके मंत्रियों द्वारा उदयादित्य वर्मा को चक्रवर्ती बनाया गया था। इससे यह संकेत मिलता है कि उदयादित्य वर्मा सूर्य वर्मा का पुत्र नहीं था और इस कारण राज सिंहासन पर उसका स्वाभाविक अधिकार भी नहीं था, पर मंत्रियों द्वारा ही उसे चक्रवर्ती या राजा के पद पर अभिषिक्त किया गया था। संभवतः राज्य के सब प्रमुख पुरुष राज पदाधिकारी उसके राजा बनने से संतुष्ट नहीं थे और इसी कारण उसके विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। 988 शकाबद 1066 ईस्वी में उत्कीर्ण प्राह नोक शिलालेख में इन विद्रोहों का विरुद्ध रूप में वर्णन है। यह शिलालेख सेनापति संग्राम द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था, जिसे कि राजा उदयादित्य वर्मा ने विद्रोहों का दमन करने तथा राजलक्ष्मी की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। उदयादित्य वर्मा के विरुद्ध पहला विद्रोह अरविंद हद्र नामक व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ था। संभवतः यह अपने को राज सिंहासन का वास्तविक अधिकारी मानता था और राज के बहुत से प्रमुख पुरुष तथा पदाधिकारी भी उसके समर्थक थे, इसलिए वह कंबुज राज के दक्षिणी प्रदेशों में अपनी सत्ता को स्थापित कर सकने में समर्थ हो गया था और वहां स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करने लग गया था। उसकी सैन्य शक्ति बहुत अधिक थी और उसके विरुद्ध उदयादित्य वर्मा द्वारा जो सेनापति भेजे गए वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके थे। अंत में सेनापति संग्राम ने उसे परास्त किया और उसने चंपा भागकर अपने प्राणों की रक्षा की। दूसरा विद्रोह कंबौ नामक सेनापति के नेतृत्व में हुआ। इस विद्रोह ने अत्यंत गंभीर रूप धारण कर लिया था और कंबौ की सेनाओं में कंबुज राज के बहुत से प्रदेशों को आक्रांत कर ध्वस्त करने में सफलता प्राप्त की थी, पर अंत में सेनापति संग्राम द्वारा कंबौ के विद्रोह का दमन किया गया और स्वयं कंबौ संग्राम द्वारा रणक्षेत्र में मार दिया गया। तीसरे विद्रोह का नेता सलवत नामक सेनापति था और विद्रोह में उसके मुख्य सहायक सिद्धिकार तथा सगांति भुवन थे, जो वीरता में अपने को कंबौ से भी अधिक मानते थे। सेनापति संग्राम द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया और विद्रोहियों के नेता सलवत को जंजीरों में जकड़कर उदयादित्य वर्मा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसके बदले में राजा ने संग्राम को अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए। सलवत के विद्रोह को सन 1066 में शांत किया गया था, जो उदयादित्य वर्मा के शासनकाल का अंतिम वर्ष था। इस प्रकार इस राजा का प्रायः सारा ही शासनकाल विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष करने में व्यतीत हो गया और उसे शांति के साथ देश का शासन करने का अवसर ही नहीं मिला। इन विद्रोहियों का एक परिणाम यह हुआ कि चंपा को कंबुज के विरुद्ध शस्त्र उठाने का सुवर्णावसर प्राप्त हो गया और उसके राजा ने कंबुज पर आक्रमण कर उसके कतिपय प्रदेशों को हस्तगत भी कर लिया। चंपा के राजा जय परमेश्वर वर्मदेव के दो अभिलेख 1050 ईस्वी के मिले हैं, जिनमें इस राजा द्वारा कंबुज देश को आक्रांत करने का उल्लेख है। 1056 ईस्वी के इसी राजा के एक अन्य अभिलेख में चंपा के युवराज महासेनापति द्वारा खमेरों की पराजय, शंभूपुर नगरी के ध्वंस तथा वहां के सभी पवित्र स्थानों के विनाश का वर्णन है। इससे सूचित होता है कि आंतरिक विद्रोहों के कारण कंबुज की शक्ति बहुत क्षीण हो गई थी, जिससे कि चंपा के राजा को उस पर आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हो गया था। उदयादित्य वर्मा का गुरु जयेंद्र पंडित था, जिससे कि इस राजा ने गणित, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। 8वीं सदी के उत्तरार्ध में कंबुज राजा जय वर्मा द्वितीय ने शिव कैवल्य को अपना राजगुरु नियुक्त किया था। 2.5 सदी के लगभग समय बीत जाने पर उदयादित्य के काल में भी कंबुज के राजगुरु का पद शिव कैवल्य के परिवार में ही चला आ रहा था। जयेंद्र पंडित इसी परिवार से संबंध था। स्टोक काकथोम के जिस अभिलेख में राजगुरुओं के इस परिवार का क्रमिक वृतांत विद्यमान है, उसे राजा उदयादित्य वर्मा के शासनकाल में ही 1052 ईस्वी में उत्कीर्ण कराया गया था। उदयादित्य का एक अन्य गुरु भी था, जिसका नाम शंकर पंडित था। लोवेक अभिलेख से ज्ञात होता है कि जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत, जहां देवताओं का निवास है, की अनुकृति के रूप में शंकर पंडित द्वारा एक स्वर्ण पर्वत बनवाया गया था और उसके शिखर पर निर्मित एक स्वर्ण मंदिर में शिवलिंग प्रतिष्ठापित कराया गया था। शंकर पंडित का कंबुज के शासन तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान था। उदयादित्य वर्मा की मृत्यु के पश्चात जब उसके छोटे भाई हर्ष वर्मा को मंत्री वर्ग द्वारा राज सिंहासन प्रदान करने का निश्चय किया गया, तो उसका राज्याभिषेक शंकर पंडित द्वारा ही कराया गया था। हर्ष वर्मा तृतीय। उदयादित्य वर्मा की मृत्यु के पश्चात उसका भाई हर्ष वर्मा तृतीय 1066 ईस्वी में कंबुज देश की राजगद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में चीन के सम्राट ने अनाम पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में सहायता के लिए चंपा और कंबुज के राजाओं से भी प्रार्थना की। इन राजाओं द्वारा अनाम के विरुद्ध सेनाएं भेजी भी गई, पर उनका कोई उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि चीन की सेनाएं पहले ही अनाम द्वारा परास्त कर दी गई थी। पर शीघ्र ही कंबुज देश और चंपा में युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका विवरण चंपा के अभिलेखों में विद्यमान है। चंपा और कंबुज की शत्रुता बहुत पुरानी थी। चंपा के अभिलेखों के अनुसार चंपा के राजा हरिवर्मा चतुर्थ ने सोमेश्वर में कंबुज सेनाओं को परास्त किया और उनके सेनापति श्री नंद वर्मदेव को कैद कर लिया। संभवतः कंबुज और चंपा का यह युद्ध 1080 ईस्वी में हुआ था। चंपा से युद्ध और उनमें कंबुज के पराजय का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि कंबुज राज की एकता कायम नहीं रह सकी। यद्यपि हर्ष वर्मा तृतीय 1089 ईस्वी में अवश्य ही कंबुज के राज सिंहासन पर विराजमान था, पर इस समय से पूर्व ही जय वर्मा नाम के एक अन्य राजा ने भी कंबुज के कतिपय प्रदेशों पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि 1082 ईस्वी में उत्कीर्ण कराए गए इस राजा के भी कतिपय अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। इस प्रकार 11वीं सदी के अंतिम भाग में कंबुज देश में दो पृथक राजा राज्य करने लग गए थे। इन राजाओं के अभिलेखों के प्राप्ति स्थानों से यह प्रतिपादित किया गया है कि हर्ष वर्मा तृतीय का शासन अंगकोर क्षेत्र और उसके दक्षिण के प्रदेशों पर था और कंबुज देश के उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी प्रदेश राजा जयवर्मा षष्ठ के शासन में थे। जयवर्मा षष्ठ के शासन की कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है। कंबुज देश की राजनीतिक एकता की पुनः स्थापना राजा सूर्य वर्मा द्वितीय द्वारा की गई, जिसके संबंध में इसी प्रकरण में आगे लिखा जाएगा। जयवर्मा षष्ठ का अंगकोर के पूर्ववर्ती राजाओं के साथ कोई संबंध नहीं था। वह जिस कुल में उत्पन्न हुआ था उसकी स्थिति स्थानीय सामंत राजकुल के सदृश थी। कंबुज राजा हर्ष वर्मा तृतीय के विरुद्ध विद्रोह करके ही उसने राज सत्ता प्राप्त की थी। उसका राज पुरोहित दिवाकर पंडित था और उसी ने उसे राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। जयवर्मा षष्ठ की मृत्यु 1107 ईस्वी में हुई और मृत्यु के अनंतर उसे परम कैवल्य पद का विरुद्ध दिया गया, धर्मेंद्र वर्मा प्रथम। जयवर्मा षष्ठ की मृत्यु के पश्चात उसके बड़े भाई धर्मेंद्र वर्मा को दिवाकर पंडित द्वारा राजा के पद पर अभिषिक्त किया गया। राज्य शासन का भार वहन कर सकने की इस राजा में क्षमता नहीं थी, क्योंकि वह वृद्ध था। राजपुरुषों और दिवाकर पंडित के आग्रह पर ही उसने राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लिया था, पर इसे देर तक राज्य के उत्तरदायित्वों की वहन करने की आवश्यकता नहीं हुई। 6 साल बाद 1113 ईस्वी में धर्मेंद्र वर्मा की बहन के दौहित्र सूर्य वर्मा ने उसे परास्त कर राज्य पर स्वयं शासन कर लिया। सूर्य वर्मा द्वितीय कंबुज देश के इतिहास में सूर्य वर्मा द्वितीय का स्थान अत्यंत महत्व का है। उसने कंबुज राज की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित किया। उस द्वारा कंबुज के दोनों राज्यों को मिलाकर एक करने की बात का उल्लेख दो अभिलेखों में विद्यमान है, वात फू के अभिलेख में और बान थात के अभिलेख में। सूर्यदेव द्वितीय से पहले कंबुज देश जिन दो राज्यों में विभक्त था उनमें से एक का शासन धर्मेंद्र वर्मा के हाथों में था और दूसरे पर हर्ष वर्मा तृतीय का कोई उत्तराधिकारी राज्य कर रहा था। सूर्य वर्मा द्वितीय ने इन दोनों को परास्त कर संपूर्ण कंबुज राज पर शासन किया। जिस दिवाकर पंडित ने सूर्य वर्मा को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था उसने उसे वह गुह में भी दीक्षित किया। कंबुज के राज पुरोहित शिव कैवल्य की उस परंपरा को स्थायी रूप से जारी रख रहे थे जिसके अनुष्ठानों में तंत्र मंत्र को प्रमुख स्थान प्राप्त था। वह गुह भी एक गुह्य तांत्रिक अनुष्ठान पद्धति थी जिसकी शिक्षा दिवाकर पंडित ने सूर्य वर्मा को दी थी। इसी पंडित की प्रेरणा से सूर्य वर्मा ने कोटि होम, लक्ष्य होम तथा महाहोम आदि याज्ञिक अनुष्ठान किए थे। वातफू में स्थित भद्रेश्वर के मंदिर में शंकर नारायण, विष्णु तथा ब्रह्मा की मूर्तियां तथा शिवलिंग की प्रतिष्ठा भी इस राजा के समय में की गई थी, जिसके कारण इस मंदिर का महत्व बहुत बढ़ गया था। पर सूर्य वर्मा द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अंगकुरवात के उस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण है जिसे संसार के आश्चर्यों में गिना जाता है। यह मंदिर अत्यंत विशाल है और इसके चारों ओर की परिखा 700 फीट चौड़ी है। इस मंदिर के संबंध में अगले अध्याय में विशद रूप से लिखा जाएगा। दिवाकर पंडित की प्रेरणा से ही इस मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। संभवतः इस मंदिर का निर्माण कार्य सूर्य वर्मा के समय में पूरा नहीं हो पाया था। उस द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया गया था उसे उसके उत्तराधिकारियों द्वारा पूरा कराया गया। अंगकोरवात के मंदिर की स्थिति अंगकोर क्षेत्र से प्रायः 1 मील की दूरी पर है। सूर्य वर्मा द्वितीय ने कंबुज राज्य की शक्ति की वृद्धि के संबंध में जो कार्य किया वह भी बड़े महत्व का था। उसके वीर कृत्यों का परिचय केवल उसके अभिलेखों से ही नहीं मिलता अपितु चीन के ग्रंथों में भी उसका वृतांत विद्यमान है। इसका कारण यह है कि सूर्य वर्मा ने 1117 और 1121 ईस्वी में दो बार अपने दूत मंडल चीन के सम्राट की सेवा में भेजे थे, जिनके कारण चीन के साथ कंबुज का राजनयिक संबंध स्थापित हो गया था। चीनी विवरणों से ज्ञात होता है कि सूर्यवर्मा का राज्य चंपा से दक्षिणी बर्मा तक विस्तृत था और मलाया प्रायद्वीप के उत्तरी प्रदेश भी उसके राज्य के अंतर्गत थे। चीनी ग्रंथों के अनुसार उसकी सेना में 2,00,000 हाथी थे। यह चाहे अतिशयोक्ति भी क्यों न हो, पर इसमें संदेह नहीं कि सूर्यवर्मा द्वितीय की सैन्य शक्ति बहुत अधिक थी, जिसका उपयोग राज्य विस्तार के लिए किया था। उसके अभिलेख में उसे एक महान विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और विजय यात्राओं में उसने रघु को भी पीछे नहीं छोड़ दिया था। यह दावा किया गया है, स्वयं प्रयाय दिशतां प्रदेशम रघु जयंतम लगयान चिकार। वह स्वयं शत्रुओं के प्रदेशों पर आक्रमण करता था और उन्हें परास्त करता था, पर सूर्यवर्मा की विजयों व युद्धों को जो वृतांत उसके अभिलेखों से नहीं मिलता, अनान तथा चंपा के अभिलेखों द्वारा उस पर प्रकाश पड़ता है। चंपा पर सूर्यवर्मा ने अनेक बार आक्रमण किए थे और उसके उत्तरी प्रदेश विजय को जीतकर अपने अधीनस्थ राज बना लिया था। 1128 ईस्वी में उसने 20,000 सैनिकों की एक सेना स्थल मार्ग से अनाम पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी और उसकी सहायता के लिए 700 जहाजों का एक बेड़ा भी जल मार्ग द्वारा अनाम भेजा गया था, पर अनाम के विरुद्ध इस अभियान में सूर्यवर्मा को विशेष सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह था कि जहाजी बेड़े के पहुंचने से पहले ही स्थल सेना अनाम पहुंच गई थी और जल सेना की सहायता के बिना वह अनाम की सेना के सम्मुख टिक सकने में असमर्थ रही। इस असफलता के बाद 1132 और 1135 ईस्वी में कंबुज द्वारा फिर अनाम की विजय का प्रयत्न किया गया, पर यह प्रयत्न सफल नहीं हुए। कंबुज अनाम को अपने अधीन नहीं कर सका। अनाम को जीत सकने में असफल होकर सूर्यवर्मा द्वितीय ने चंपा की विजय के लिए तैयारी की। चंपा राज्य के उत्तरी भाग पर विजय कर वह पहले ही अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। अब उसने दक्षिणी चंपा के विरुद्ध अभियान शुरू किया। 1147 ईस्वी में चंपा के राज सिंहासन पर राजा जय हरिवर्मदेव षष्ठ आरूढ़ हुआ था। नए राजा के राज्य प्राप्त करने से उत्पन्न स्थिति से सूर्यवर्मा द्वितीय से लाभ उठाया और अपने प्रधान सेनापति शंकर को एक बड़ी सेना के साथ चंपा पर आक्रमण करने का आदेश दिया। विजय राज चंपा राज का उत्तरी भाग की सेना भी इसी अभियान में सेनापति शंकर की सहायता के लिए रण क्षेत्र में आ गई। चंपा के अभिलेखों के अनुसार इस आक्रमण में शंकर को सफलता प्राप्त नहीं हुई, उसकी सेना परास्त हो गई और वह स्वयं भी युद्ध क्षेत्र में मारा गया। अगले साल सूर्यवर्मा ने एक और भी अधिक बड़ी सेना चंपा पर आक्रमण करने के लिए भेजी, पर जय हरिवर्मा ने उसे भी परास्त कर दिया। इन विजयों से जय हरिवर्मा का हौसला बहुत बढ़ गया और उसने विजय राज्य को फिर से अपने अधीन करने का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। हरिवर्मा विजय को न जीत सके, इस प्रयोजन से सूर्यवर्मा ने अपने सयाल रानी के भाई हरदेव को वहां का शासक नियुक्त किया और उसकी सहायता के लिए एक शक्तिशाली सेना वहां भेज दी। पर चंपा के राजा जय हरिवर्मा ने महिष के रण क्षेत्र में हरिदेव को परास्त कर दिया और विजय के प्रदेश से कंबुज का आधिपत्य की समाप्ति कर दी। चंपा के अभिलेखों से यह सूचित होता है कि अन्य देशों की विजय के प्रयत्न में सूर्यवर्मा द्वितीय को असफलता का सामना करना पड़ा था। उसके अभिलेखों से उसे जो रघु से भी बढ़कर विजेता कहा गया है, वह किन विजयों के कारण है यह हमें ज्ञात नहीं है, पर यह तथ्य है कि चंपा को जीतने के उसके सब प्रयत्न असफल रहे और उसके शासनकाल का बड़ा भाग युद्धों में ही व्यतीत हुआ था। धर्णेन्द्र वर्मा द्वितीय। सूर्य वर्मा द्वितीय के शासनकाल का अंतिम भाग प्रायः अंधकारमय है। उसकी मृत्यु किस वर्ष में हुई यह भी ज्ञात नहीं है, पर मृत्यु के पश्चात वह परम विष्णु लोक विरुद्ध से प्रसिद्ध हुआ और उसके बाद धर्णेन्द्र वर्मा द्वितीय कंबुज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। इस राजा के संबंध में सिंघल लंका के इतिहास से कुछ प्रकाश पड़ता है। इस काल में सिंघल में राजा पराक्रम बाहु का शासन 1164 से 97 ईस्वी था। पराक्रम बाहु ने कंबुज देश के राजा के पास उपायम भेंट आदि भेजा था, जिसमें सिंघल की राजकुमारी भी थी। मार्ग में वर्मा के राजा ने उसे अधिकृत कर लिया, जिस पर पराक्रम बाहु ने समुद्र मार्ग से एक सेना वर्मा भेजी और उसके बंदरगाहों को लुटवाया। धर्णेन्द्र वर्मा के बाद एक राजा जय वर्मा सप्तम ने अपने राज के इस अपमान का प्रतिशोध करने के लिए वर्मा पर आक्रमण किया था और पेगू पर अपनी विजय पताका फहरा दी थी। यशो वर्मा द्वितीय धर्णेन्द्र वर्मा द्वितीय के बाद यशो वर्मा द्वितीय कंबुज देश का राजा बना। इस राजा का एक अभिलेख बांते चमर से उपलब्ध हुआ, जिससे इसके इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। इस अभिलेख के अनुसार भरत राहु समबुद्धि नामक व्यक्ति के नेतृत्व में यशो वर्मा के विरुद्ध विद्रोह हो गया था और इस विद्रोह ने अत्यंत गंभीर रूप प्राप्त कर लिया था। विद्रोहियों ने राजधानी की राजकीय सेनाओं को परास्त कर राजप्रसाद को भी आक्रांत कर दिया था, जिसके कारण राजा की स्थिति बहुत डावाडोल हो गई थी। इस दशा में श्री नंद कुमार राजा की सहायता के लिए आगे बढ़ा और उसने स्वयं युद्ध की विद्रोहियों युद्ध कर विद्रोहियों को परास्त किया। यह श्री नंद कुमार जय वर्मा का पुत्र था, जो आगे चलकर कंबुज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। इतिहास में वह जय वर्मा सप्तम के नाम से प्रसिद्ध है। भरत राहु समबुद्धि से श्री नंद कुमार के युद्ध प्रसंग में ही सबसे पहले संजक संज्ञा के उन राज कर्मचारियों या सैनिकों का उल्लेख आया है, जो अपने स्वामी की अंगरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा उद्यत रहते थे। ये संजक अपने स्वामी के साथ छाया की तरह रहा करते थे और जब तक इनके शरीर में प्राण रहता था, कोई शत्रु इनके स्वामी का बाल विवाह का नहीं कर सकता था। श्री नंद कुमार के दो संजकों के नाम अर्जुन और श्रीधर देव थे। ये दोनों भरत राहु समबुद्धि से अपने स्वामी की रक्षा करते हुए काम आए थे और श्री नंद कुमार ने इनके परिवारों के भरण पोषण के लिए जहां समुचित व्यवस्था की थी, वहां साथ ही इनकी मूर्तियां भी मंदिर में प्रतिष्ठापित कर दी गई थी, जिससे सब कोई उनका समुचित सम्मान कर सकते थे। भरत राहु समबुद्धि के विद्रोह से कंबुज राज की शक्ति को अधिक क्षति नहीं पहुंची थी, इसीलिए यशो वर्मा द्वितीय ने चंपा को जीतने का प्रयत्न किया और श्री नंद कुमार के सेनापतित्व में एक सेना चंपा पर आक्रमण करने के लिए भेजी। शुरू में इस सेना को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। चंपा के राजा जय इंद्र वर्मा ने वेक पर्वत पर जिस नए दुर्ग का निर्माण कराया था, उस पर कंबुज सेनाओं ने कब्जा कर लिया, पर शीघ्र ही चंपा की सेना ने अपने को पुनः संगठित कर लिया और श्री नंद कुमार उसके सम्मुख नहीं टिक सका। वह परास्त हो गया और बड़ी कठिनता से अपने देश वापस लौटने में समर्थ हुआ, पर कंबुज लौटकर श्री नंद कुमार देर तक जीवित नहीं रहा। युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके वीर कृत्यों की स्मृति में राजा द्वारा उसी मंदिर में उसकी भी मूर्ति स्थापित कर दी गई, जहां उसके संजकों की मूर्तियां पहले ही विद्यमान थी। बार बार परास्त हो जाने पर भी यशो वर्मा द्वितीय ने चंपा के विरुद्ध अपने अभियान को बंद नहीं किया। श्री नंद कुमार के पिता जय वर्मा के सेनापतित्व में एक अन्य सेना चंपा पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई, पर जय वर्मा चंपा के विरुद्ध आक्रमण को जारी नहीं रख सका। इसका कारण यह था कि कंबुज की सेना की अपनी देश से अनुपस्थिति का लाभ उठाकर त्रिभुवनादित्य वर्मा नामक साहसी व्यक्ति ने यशो वर्मा द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था और कंबुज में जो सैनिक विद्यमान थे उन्हें परास्त कर राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। जो ही यह समाचार जय वर्मा को ज्ञात हुआ, वह चंपा से लौट पड़ा, पर उसके आने से पूर्व ही त्रिभुवनादित्य वर्मा ने यशो वर्मा द्वितीय को मौत के घाट उतार दिया। त्रिभुवनादित्य वर्मा यशो वर्मा द्वितीय को मारकर त्रिभुवनादित्य वर्मा ने सन 1166 में कंबुज देश के राज सिंहासन को अधिगत किया था। संभवतः उसका कंबुज के किसी भी राजकुल के साथ संबंध नहीं था, इसीलिए एक अभिलेख में उसे भृत्य कहा गया है। संभवतः यह यशो वर्मा द्वितीय की सेवा में किसी राजकीय पद पर नियुक्त था और अवसर पाकर अपने स्वामी के विरुद्ध विद्रोह कर उसने राजा का पद प्राप्त कर लिया था। त्रिभुवनादित्य वर्मा का शासनकाल भी चंपा के विरुद्ध संघर्ष में व्यतीत हुआ। उसके युद्धों का वृतांत चीनी ग्रंथों में भी पाया जाता है और कंबुज के कुछ अभिलेखों में भी उनका उल्लेख है। इस राजा के काल में भी चंपा के राज सिंहासन पर जय इंद्र वर्मा विराजमान था और उसने रण क्षेत्र में नए कंबुज राज पर भी विजय प्राप्त की थी। चंपा की सेनाओं ने 1170 ईस्वी में कंबुज के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था और उनका यह आक्रमण 7 साल तक जारी रहा था। चंपा के राजा ने कंबुज के विरुद्ध जल सेना का भी प्रयोग किया था और उसका जहाजी बेड़ा मेकांग नदी के रास्ते कंबुज की राजधानी तक पहुंच गया था। त्रिभुवनादित्य वर्मा चंपा की सेना से न केवल परास्त ही हुआ था, अपितु रण क्षेत्र में उसकी वीर गति भी प्राप्त की थी। 1177 में जय वर्मा सप्तम पर त्रिभुवनादित्य वर्मा के मृत्यु के बाद कंबुज देश की स्वतंत्र सत्ता का अंत नहीं हो गया। जय वर्मा ने चंपा के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा और जय इंद्र वर्मा की सेनाओं को परास्त कर उन्हें कंबुज छोड़कर चले जाने के लिए विवश किया। इस कार्य में 4 साल लग गए और चंपा की सैन्य शक्ति को पूर्ण रूप से परास्त कर कंबुज का राज्यासन उसने प्राप्त कर लिया 1181 ईस्वी में। कंबुज देश के राजाओं में जय वर्मा सप्तन का स्थान सर्वोपरि है। वह एक महान विजेता था। पूर्व में चंपा को परास्त कर अपने राज्य की सीमा उसने चीन के समुद्र तक पहुंचा दी थी और वर्मा के पगान राज्य को जीत लेने के कारण उसके राज्य की पश्चिमी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ आ लगी थी। कंबुज राज का अधिकतम विस्तार इसी राजा के शासनकाल में हुआ था, पर जय वर्मा सप्तम केवल विजेता ही नहीं था, अपनी प्रजा के हित और कल्याण के लिए उसने बहुत से चिकित्सालय खुलवाए, मार्गों पर धर्मशालाओं का निर्माण कराया और विद्या के प्रसार के लिए विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और कंबुज में उसके लोकोपकारी कार्यों को देखकर भारत के राजा अशोक का स्मरण हो आता है, इसीलिए कतिपय विद्वानों ने उसे कंबुज का अशोक भी कहा है। जय वर्मा सप्तम की विजयों का वृतांत जहाँ कंबुज तथा चंपा के अनेक अभिलेखों द्वारा ज्ञात होता है, वहीं चीनी ग्रंथों से भी उन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उसके युद्धों का प्रधान क्षेत्र चंपा राज्य का था, जिसके साथ कंबुज का संघर्ष चिरकाल से चला आ रहा था। 1166 ईस्वी में चंपा की सेनाएं जल और स्थल मार्गों से आगे बढ़ती हुई कंबुज की राजधानी तक चली आई थी और उनसे युद्ध करते हुए कंबुज राज त्रिभुवनादित्य वर्मा ने भी गति प्राप्त की थी। जय वर्मा ने अपने देश के इस अपमान का प्रतिशोध किया और चंपा पर आक्रमण कर उसके राजा को बंदी बना लिया। चंपा के कुछ अभिलेखों से इसके संबंध में घटनाओं पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। उनके अनुसार जय वर्मा सप्तम द्वारा चंपा पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व श्री सूर्य वर्मदेव द्वारा किया गया था। मूलतः यह सूर्य वर्मदेव चंपा देश का निवासी था और वहां से कंबुज आकर बस गया था। कंबुज के राजा ने उसकी शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी थी, जिससे वह शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हो गया था। उसे अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का प्रथम अवसर तब मिला जबकि मलयन नामक नगर में कुछ लोगों ने जय वर्मा सप्तम के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उसका दमन करने के लिए सूर्य वर्मदेव को भेजा गया। विद्रोह का दमन करने में उसके अनुपम सफलता प्राप्त की, जिससे प्रसन्न होकर राजा जय वर्मा ने उसे युवराज का पद प्रदान किया। कंबुज देश में युवराज पद एक उच्च तथा सम्मानित राजकीय पद था। चंपा के विरुद्ध युद्ध शुरू होने पर इसी सूर्य वर्मदेव को कंबुज के सेनाओं का सेनापति बनाकर भेजा गया। चंपा को परास्त करने में भी उसे सफलता प्राप्त हुई। 1190 ईस्वी में कंबुज की सेना ने चंपा को पूरी तरह पराजित किया और वहां के राजा जय इंद्र वर्मा को बंदी बनाकर कंबुज ले आया गया। यह पहला अवसर था जबकि चंपा को पूर्ण रूप से अपने अधीनता में ले आने में कंबुज देश को सफलता प्राप्त हुई थी। जय वर्मा सप्तम ने शासन के लिए चंपा राज्य को 2 भागों में विभक्त कर दिया। दक्षिणी भाग का शासक श्री सूर्य वर्मदेव को नियुक्त किया गया और उत्तरी भाग का शासन सूर्य जय वर्मदेव के सुपुर्द किया गया, जो राजा जय वर्मा सप्तम का सयाल पत्नी का भाई था। दक्षिणी चंपा की राजधानी राजपुर बनाई गई और उत्तरी चंपा की विजयनगरी। दक्षिणी चंपा का शासन करने में श्री सूर्य वर्मदेव को अच्छी सफलता प्राप्त हुई। उसके विरुद्ध जो भी विद्रोह हुए उनका दमन करने में वह समर्थ हुआ और राजपुर में उसका शासन सुव्यवस्थित तथा शांतिमय रहा। पर उत्तरी चंपा के शासन को संभाल सकने में सूर्य जय वर्मदेव को सफलता प्राप्त नहीं हुई। रघुपति नामक एक सामंत ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सूर्य जय वर्मदेव को परास्त कर उसने श्री जय इंद्र वर्मदेव के नाम से स्वयं राजा का पद संभाल लिया। कंबुज राज जय वर्मा सप्तम इसे नहीं सह सका क्योंकि सूर्य जय वर्मदेव उसका सयाल था और वह उसी द्वारा चंपा का शासक नियुक्त किया गया था। उसने जय इंद्र वर्मदेव रघुपति को सिंहासन च्युत करने के प्रयोजन से एक सेना भेजी, जो पहले राजपुर गई और वहां के राजा श्री सूर्य वर्मदेव के सेनापतित्व में उत्तरी चंपा विजय की ओर अग्रसर हुई। जय इंद्र वर्मदेव रघुपति इस सेना के सम्मुख नहीं टिक सका। विजय पर कंबुज की सेना का कब्जा हो गया, रघुपति की पराजय हुई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब चंपा देश के दोनों भाग श्री सूर्यवर देव के शासन में आ गए। रघुपति को परास्त करने के लिए जो सेना कंबुज से चंपा भेजी गई थी उसके साथ चंपा का वह भूतपूर्व राजा जय इंद्र वर्मा भी था, जिसे 1190 ईस्वी में बंदी बनाकर कंबुज से ले आया गया था। जयवर्मा सप्तम की इच्छा थी कि उसे उत्तरी चंपा का शासक नियुक्त किया जाए ताकि चंपा की राष्ट्रीय भावना को संतुष्ट किया जा सके। वह चाहता था कि जय इंद्रवर्मा उसके अधीनस्थ राजा के रूप में विजय का शासन करे, पर श्री सूर्यवर्म देव ने उसकी इस योजना को क्रियान्वित नहीं होने दिया। उसने विजय को भी अपने शासन में ले लिया और संपूर्ण चंपा देश पर स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करने लगा। जय इंद्रवर्मा ने जब एक सेना एकत्र कर उसका विरोध करने का प्रयत्न किया तो श्री सूर्यवर्म देव ने उसके विरुद्ध सैन्य शक्ति का प्रयोग किया और त्रैक के रण क्षेत्र में उसे न केवल परास्त किया अपितु उसका वध भी कर दिया। अब श्री सूर्यवर्म देव का मार्ग निष्कंटक हो गया और उसे जयवर्मा सप्तम की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। संपूर्ण चंपा का वह अब स्वतंत्र राजा बन गया था 1192 ईस्वी में। पर श्री सूर्यवर्म देव शांतिपूर्वक चंपा का शासन नहीं कर सका। कंबुजराज जयवर्मा सप्तम ने उसे अपनी वशवर्ती बनाने के लिए चंपा पर अनेक बार आक्रमण किया, जिनके कारण उसे निरंतर युद्धों में व्याप्त रहना पड़ा। 1203 ईस्वी में एक बड़ी सेना कंबुज से उसके विरुद्ध भेजी गई, जिसका सेनापति युवराज ओंधोनपति था। वह श्री सूर्यवर्म देव का चाचा था और मूलतः चंपा का निवासी था। संभवतः वह भी अपने भतीजे के साथ ही चंपा से कंबुज आया था और जयवर्मा सप्तम का आश्रय प्राप्त कर उसने भी शासन तंत्र में अच्छा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। उसे भी युवराज के पद से सम्मानित किया गया था। युवराज ओंधोनपति की सेनापतित्व में कंबुज की जो सेना श्री सूर्यवर्म देव के विरुद्ध चंपा भेजी गई उसे पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। श्री सूर्यवर्म देव परास्त हो गया और चंपा का शासन जयवर्मा सप्तम द्वारा ओंधोनपति के सुपुर्द कर दिया गया। उसके शासन के विरुद्ध जो अनेक विद्रोह चंपा में हुए उनका दमन करने में भी उसने अच्छी सफलता प्राप्त की। उसकी वीरता से प्रसन्न होकर जयवर्मा सप्तम ने उसे चंपा का वैध राजा स्वीकार कर लिया। यद्यपि उसकी स्थिति कंबुज के अधीनस्थ शासक की थी, पर उसने भाग्य में चैन के साथ चंपा का शासन करना नहीं लिखा था। शीघ्र ही अनाम के साथ युद्ध प्रारंभ हो गए, जिनमें कंबुज सेना ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कंबुज की इस सेनाओं में पगान, दक्षिणी बर्मा और सियाम के सैनिक भी बड़ी अच्छी संख्या में थे। बर्मी और सियामी सैनिकों का कंबुज की सेना में सम्मिलित होना इस बात का सूचक है कि जयवर्मा सप्तम का शासन बर्मा और सियाम के कतिपय प्रदेशों पर भी अवश्य विद्यमान था। अनाम के विरुद्ध युद्ध में चंपा और कंबुज की कहां तक सफलता प्राप्त हुई थी यह कह सकना कठिन है, पर इसमें संदेह नहीं कि इन युद्धों के कारण कंबुज देश का सैन्य शक्ति का बहुत ह्रास हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप कंबुज के लिए चंपा को भी अपने आधिपत्य में रख सकना संभव नहीं रहा था। यह दशा थी जबकि जय परमेश्वर वर्मा ने चंपा में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। 1226 ईस्वी में जय परमेश्वर वर्मा चंपा के पुराने राजवंश में उत्पन्न हुआ था और अपने पिता जय हरिवर्मा सप्तम के बाद उसी को चंपा का राजा बनना चाहिए था, पर 1163 ईस्वी में जय इंद्रवर्मा ने चंपा के राज सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जिसके कारण जय परमेश्वर वर्मा अपने देश को छोड़कर अन्यत्र प्रवास करने के लिए विवश हो गया था। अनेक स्थानों पर प्रवास करने के पश्चात उसने भी कंबुज आकर आश्रय ग्रहण किया था और वहां के राजा जय वर्मा सप्तम ने उसे भी युवराज की पदवी से विभूषित किया था। अनाम के युद्धों के कारण जब कंबुज की सैन्य शक्ति छीन हो गई और उसके लिए अन्य देशों को अपने अधीन रख सकना संभव नहीं रहा, तो जय परमेश्वर वर्मा ने इस दशा से लाभ उठाया और चंपा के राज सिंहासन को अधिगत कर लिया। संभवतः इस समय तक कंबुज राज जय वर्मा सप्तम का देहावसान हो चुका था। उसकी मृत्यु के वर्ष का ठीक ठाक पता नहीं लग सका है। अधिक संभव यह है कि कंबुज साम्राज्य को ह्रास का प्रारंभ होने 1226 ईस्वी के लगभग से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जयवर्मा सप्तम के धार्मिक एवं लोक हितकारी कार्य। जयवर्मा सप्तम न केवल एक महान विजेता था और साम्राज्य का निर्माता था, अपितु एक धार्मिक तथा प्रजापालक राजा भी था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध भिक्षुओं के लिए उसने अनेक विहारों आदि का निर्माण कराया था। तापोह्य अभिलेख में उसने लिखा है कि प्राणी मात्र के शरण बुद्ध पूजित हैं, फिर बुद्ध मार्ग भी पूजित हैं। यह अभिलेख तापोह्य के राजविहार नामक बौद्ध विहार की स्थापना के उपलक्ष्य में उत्कीर्ण कराया गया था। इस विहार में उसने प्रज्ञा पारमिता की मूर्ति प्रतिष्ठापित कराई थी और इस मूर्ति के मुख की आकृति अपनी माता के मुखाकृति की अनुकृति में बनवाई थी। इस विशाल राजविहार में 12,640 व्यक्ति निवास करते थे और उनकी सेवा तथा विहार की देखभाल के लिए जो स्त्री पुरुष देव परिचारक नियुक्त थे उनकी संख्या 66,625 थी। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का इस राजविहार से संबंध था उनकी कुल संख्या 79,265 थी। इनमें ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्हें चंपा और बर्मा से बंदी बनाकर लाया गया था। 439 आचार्य तथा 970 विद्यार्थी भी इस विहार में निवास करते थे जो शास्त्रों के अध्ययन तथा विद्या के अभ्यास में तत्पर रहते थे। इस राजविहार का खर्च चलाने के लिए राजा तथा अन्य भूमिपतियों द्वारा 3400 गांव प्रदान किए गए थे जिनकी आमदनी इसी पर खर्च की जाती थी। राजा ने प्रचुर मात्रा में सोना चांदी 35 हीरे 40,620 मोती 4,540 रत्न तथा अन्य बहुमूल्य मणि माणिक्य स्वर्ण निर्मित एक बड़ी थाली कुछ खड़ियां तथा भारी परिमाण में सीसा भी इस विहार को प्रदान किया था। ताह पोही अभिलेख में जय वर्मा द्वारा बनवाई गई आरोग्यशालाओं का भी वर्णन है। उसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रांतों में 102 आरोग्यशालाएं और 798 आरोग्य मंदिर स्थापित थे जिनमें रहने वाले रोगियों तथा अन्य व्यक्तियों को 1,17,200 खारिका चावल प्रति वर्ष दिया जाता था। एक खारिका 128 शेर के बराबर होती थी। इस प्रकार 3.5 लाख मन से भी अधिक चावल इन चिकित्सालयों के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता था। आरोग्यशालाओं और आरोग्य मंदिरों का खर्च चलाने के लिए 838 गांव लगा दिए गए थे जिनकी आमदनी इन्हीं पर खर्च की जाती थी। इन चिकित्सालयों में 81,640 स्त्री पुरुष काम करते थे। राजकीय भंडार से जो वस्तुएं इनके लिए प्रदान की जाती थी उनमें अन्य के अतिरिक्त मधु मोमबत्ती अजवायन सौंफ कपूर इलायची सोंट और दवाइयों के बक्स आदि भी होते थे। इन आरोग्य मंदिरों का उल्लेख कर राजा जयवर्मा सप्तम ने प्रार्थना की है कि मेरे इन पुण्य कर्मों से मेरी माता भवसागर से मुक्त हो बुद्ध पद को प्राप्त करें। राजा जयवर्मा सप्तम के आरोग्यशाला संबंधी 10 अभिलेख मिले हैं जो प्रायः एक सदृश हैं। इन सब में रोगांधकार को दूर करने वाले भैषज गुरु बुद्ध बोधिसत्व सूर्य वैरोचन चंद्ररोचि और वैरोचन रोहिणी की महिमा का बखान कर जयवर्मा के विषय में यह लिखा है, देहिनाम देहरोगो यन मनोरोगो रुजतराम राष्ट्र दुःखम हि भ्रतृणाम दुःखम दुःखम तू नात्मनः। मनुष्यों के शारीरिक रोगों से उसे जयवर्मा सप्तम को मानसिक व्यथा अनुभव होती है जो रोगी की व्यथा की तुलना में अधिक कष्टकर होती है, क्योंकि राजा अपने दुख से दुखी नहीं होता अपितु राष्ट्र जनता के दुख से ही उसे दुख होता है। जयवर्मा सप्तम के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि आरोग्यशालाओं का निर्माण भैषज गुरु बुद्ध के मंदिर के चारों ओर किया जाता था और वे वर्ण व जाति आदि के भेदभाव के बिना सबके लिए खुली रहती थी। भवन वन निर्माण एवं कलाकृतियां। कंबोडिया के अंगकोर थोम में कंबुज देश की जिस प्राचीन राजधानी के अवशेष विद्यमान है उसके निर्माण का श्रेय श्री जयवर्मा सप्तम को दिया जाता है। पहले यह माना जाता था कि इन नगरी का निर्माण यशोवर्मा प्रथम 889 से 908 द्वारा किया गया था, पर अब इस मत का परित्याग कर दिया गया है। इसी प्रकार कंबोडिया के कितने ही अन्य विहारों मंदिरों आदि के निर्माण का श्रेय भी जयवर्मा सप्तम को ही दिया जाने लगा है। अगले अध्याय में हम इन पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। जयवर्मा सप्तम ने कितने साल और किस वर्ष तक राज किया इस संबंध में ऐतिहासिक कोई सुनिश्चित मत निर्धारित नहीं कर सके हैं। शक संवत से अंकित इस राजा का अंतिम लेख 1126 शकाबद मिला है, जिससे इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसका शासन काल सन 1204 तक अवश्य था। एक अन्य अभिलेख 1128 शकाबद 1206 ईस्वी का है, जिसमें कि यह वर्म देव नाम अंकित है। सदे ने इसे जयवर्म देव या जयवर्मा सप्तम का माना है। इस प्रकार इस प्रतापी राजा का शासनकाल 1206 ईस्वी तक पहुंच जाता है। मृत्यु के पश्चात जयवर्मा सप्तम को महापरम सौगत विरुद्ध दिया गया था, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का श्रद्धालु अनुयायी था। चौथा, कंबुज राज्य का ह्रास। जयवर्मा सप्तम के उत्तराधिकारी जयवर्मा सप्तम के बाद जो राजा कंबुज देश के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए वे जयवर्मा के समान प्रतापी नहीं थे। उनके शासनकाल में कंबुज देश की शक्ति छीन होने लगी और धीरे धीरे उसकी अधीनता से प्राय वे सभी प्रदेश स्वतंत्र हो गए जिन्हें की कंबुज के प्रतापी राजाओं ने अपने सैन्य बल से विजय किया था। जयवर्मा सप्तम के पश्चात इंद्रवर्मा द्वितीय कंबुज का राजा बना। अंगकोर थोम के मंगलार्थ मंदिर में उत्कीर्ण राजा श्री नंद्र राजवर्मा का एक अभिलेख है जिसमें जयवर्मा सप्तम के उत्तराधिकारियों की सूची दी गई है। इससे से यह ज्ञात होता है कि जयवर्मा सप्तम के बाद इंद्रवर्मा द्वितीय कंबुज का राजा बना और वह 1243 ईस्वी तक राजगद्दी पर रहा था। इस राजा के शासनकाल की कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है। इंद्रवर्मा द्वितीय का उत्तराधिकारी जयवर्मा अष्टम था जिसने की 1295 ईस्वी तक कंबुज देश का शासन किया। 52 वर्ष के सुदीर्घ शासन के बाद वह अत्यंत वृद्ध हो गया था और उसके लिए राज्य को संभाल सकना सुगम नहीं रहा था। इसलिए उसने अपने जमाता श्रीनंद्र वर्मा को राज्य सौंप दिया था और वह स्वयं शासन कार्य से निवृत्त हो गया था। यही वह समय था जबकि मंगोल लोगों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और चीन पर कुबेल खां का सशक्त शासन स्थापित हो गया था। मंगोलों का साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था और वे पड़ोस के सब देशों को अपना वशवर्ती बनाने के लिए कटिबद्ध थे। मंगोल सेनाओं ने चंपा को भी आक्रांत किया था जिसका सामना कर सकना वहां के राजा के लिए संभव नहीं हुआ था। चंपा ने कुबले खां की अधीनता स्वीकार कर ली थी और यह मंगोल सम्राट उस देश को अपने साम्राज्य के अंतर्गत मानने लगा था। इसीलिए उसने सगतु खां को चंपा में अपना प्रतिनिधि नियत किया, पर चंपा के लोग अपने देश की स्वतंत्रता के अपहरण को नहीं सह सके। कुमार हरिजीत वर्मा के नेतृत्व में उन्होंने मंगोल आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब कुबले खां ने सगतु खां को चंपा की विजय का कार्य सुपुर्द किया 1283 ईस्वी में और वह सेनापति अनेक वर्षों तक चंपा के मंगोलों की अधीनता में ले आने के लिए युद्ध में तत्पर रहा। यद्यपि मंगोल लोग चंपा को जीत तो नहीं सके पर उन्होंने वहां के राजा को अपना वशवर्ती होकर रहने के लिए विवश अवश्य कर दिया। कंबुज देश के प्रति भी मंगोलों ने इसी नीति का अनुकरण किया। वे चाहते थे कि कंबुज का राजा भी मंगोल सम्राट की सेवा में भेंट उपहार भेजकर उसका वशवर्ती होकर रहना स्वीकार कर ले। 1285 ईस्वी में कंबुज के राजा की ओर से मंगोल सम्राट की सेवा में भेंट उपहार भेज दिए गए थे जिसके कारण मंगोल सेना को उस पर आक्रमण करने का कोई आवश्यकता नहीं रह गई थी। जयवर्मा अष्टम ने अपने जमाता श्री चंद्र वर्मा के पक्ष में राज सिंहासन का परित्याग किया था 1285 ईस्वी में, पर उसका पुत्र यह नहीं सह सका और श्री नंद्र वर्मा से संघर्ष करने के लिए उठ खड़ा हुआ। इस पर श्री नंद्र वर्मा ने अपने स्याल को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। श्री नंद्र वर्मा के शासनकाल में चीन से एक दूतमंडल कंबुज देश आया था जिसके साथ चेऊ ताकुअन नाम का एक लेखक भी था। इसी ने कंबुज देश के रीति रिवाजों तथा आचार व्यवहार का विशेष रूप में वर्णन किया है जो इस देश की सभ्यता तथा संस्कृति के परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी चीनी लेखक के वृत्तांत से यह ज्ञात होता है कि श्री नंद्र वर्मा ने अपने श्याल जयवर्मा अष्टम के पुत्र को परास्त कर राज सिंहासन को हस्तगत कर लिया था। श्री नंद्र वर्मा ने 1307 ईस्वी तक कंबुज का शासन किया। अपने श्वसुर जयवर्मा अष्टम का अनुसरण कर उसने भी स्वेच्छापूर्वक राज सिंहासन का परित्याग कर दिया और उसके बाद युवराज श्री नंद्र जयवर्मा ने कंबुज के शासन सूत्र को अपने हाथों में ले लिया। श्री नंद्र जयवर्मा का श्री नंद्र वर्मा से क्या संबंध था यह ज्ञात नहीं है। कंबुज में युवराज से एक उच्च राज पदाधिकारी ही अभिप्रेत होता था। श्री नंद्र जयवर्मा राजकुल के साथ संबंध रखता था। इसका संकेत मल्लगार्थ मंदिर के अभिलेख में विद्यमान है। इस राजा का शासनकाल 1307 से 1327 ईस्वी तक था। कंबुज देश में जो उत्कीर्ण अभिलेख उपलब्ध हुए हैं उनसे वहां के एक अन्य राजा का भी परिचय प्राप्त होता है जिसका नाम जयवर्मा द्वी परमेश्वर था। अंगकुरवात में इस राजा का एक अभिलेख उत्कीर्ण है जिसमें ब्राह्मण विदेश द्वारा स्थापित किए गए आश्रम के लिए राजा द्वारा प्रदान की गई दान दक्षिणा का उल्लेख है। अभिलेख में यह भी बताया गया है कि उद्देश्य के पूर्वज ब्राह्मण सर्व अज्ञ मुनि आर्य देश भारत से कंबुज आए थे। विद्वेश का एक अन्य पूर्वज विदेश वेद जयवर्मा अष्टम का होता है तथा श्री नंद्र वर्मा के राज्याभिषेक में ऋत्विज था। विद्वेश वेद की मृत्यु के बाद एक अन्य ब्राह्मण श्री नंद्र वर्मा होता था और बना और उसने यशोधर सरोवर के तट पर गंगा की एक मूर्ति स्थापित की। कंबुज से कोई ऐसा विलेख अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है जयवर्मा दी परमेश्वर के उत्तराधिकारियों का जिसमें उल्लेख हो। इसके बाद का कंबुज का इतिहास जानने के एकमात्र साधन खमेर भाषा के वे ग्रंथ हैं जिनकी रचना बहुत बाद में हुई थी। पुराने इतिहास के संबंध में उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं है। कंबुज का पतन 14वीं सदी और उसके बाद जिन राजाओं ने कंबुज का शासन किया उनका इतिवृत्त प्रायः अज्ञात है, पर इस काल की घटनाएं ऐसी हैं जो कंबुज के पतन पर प्रकाश डालती हैं। जयवर्मा सप्तम के बाद चंपा तो कंबुज के आधिपत्य से स्वतंत्र हो ही गया था। उधर सियाम में भी कंबुज के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ हो गए थे। 13वीं सदी के मध्य भाग में इंद्रादित्य नामक थाई सरदार ने सुखोदय को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। 13वीं सदी के अंत में सुखोदय के राज सिंहासन पर राम कहमहेंग विराजमान था जो अत्यंत वीर तथा प्रतापी राजा था। उसने कंबुज पर भी आक्रमण किए। चेउ ताकुवन ने लिखा है कि सियाम और कंबुज के युद्ध में अंगकोर का प्रदेश बुरी तरह से ध्वस्त हो गया था। यह चीनी लेखक 1296 ईस्वी में कंबुज आया था और उससे कुछ समय पूर्व ही सुखोदय की सेनाओं ने कंबुज पर आक्रमण किया था। 1350 ईस्वी के लगभग सियाम में एक अन्य स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई जिसकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या के राजाओं ने संपूर्ण सियाम और लाओस पर अपना शासन स्थापित किया और कंबुज पर भी वे आक्रमण करते रहे। उधर कंबुज के पूर्व में स्थित अनाम का राज भी बहुत शक्तिशाली हो गया और 15वीं सदी में उसने चंपा को जीत लिया। इन दो शक्तिशाली राज्यों सियाम और अनाम के बीच में पड़कर कंबुज की शक्ति निरंतर छीन होती गई और इन द्वारा वह निरंतर आक्रांत होता रहा। इस प्रकार पड़ोस के शक्तिशाली राज्यों द्वारा आक्रांत होता हुआ कंबुज देश बहुत निर्मल हो गया। वह यह स्थिति थी जब यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार प्रारंभ किया। कंबुज उनके सामने नहीं टिक सका और 1854 ईस्वी में वहाँ के निर्भर राजा ने फ्रांस के अधीनता स्वीकार कर ली। फ्रांस के अधीन उसकी वही स्थिति हो गई जो ब्रिटिश शासन के काल में भारत की देशी रियासतों की थी।